लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, बांग्लादेश, भारत, नेपाल में कई हफ्तों से हो रही मूसलाधार बारिश, बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के कारण लाखों बच्चे और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को तत्काल जीवन रक्षक सहायता प्रदान किए जाने की जरूरत है और मौजूदा हालात में अन्य लाखों बच्चों पर भी जोखिम मंडरा रहा है। दक्षिण एशिया के यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक जीन ग्रॉफ ने बताया कि इस क्षेत्र में चरम मौसम से जनजीवन पर असर पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मानसून की भारी बारिश, बाढ़ और लगातार हो रहे भूस्खलनों से बच्चों और उनके परिवार के जीवन में मानो तूफान आ गया है। कोविड-19 महामारी, पाबंदियों के अन्य रोकथाम उपायों के कारण जटिलताएं और भी बढ़ रही हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों की भी रफ्तार बढ़ रही है। भारत के बिहार, असम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 60 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें लगभग 24 लाख बच्चे हैं। इसका बच्चों पर असर के बारे में यूएन हिंदी न्यूज की संवाददाता अंजू शर्मा ने भारत में यूनिसेफ के आपदा जोखिम कम करने वाले मामलों के विशेषज्ञ सर्वजीत सहोटा से बातें की।
मेन इस वक्त जो एक्यूट सिचुएशन है वो असम में है, और असम में जैसे मैंने कहा 33 में से 30 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं। अगर हम देखें तो हमारा देश और खास करके असम ज्योग्राफिक सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा रिमोटनेस है, तो लोग बाग अलग अलग जगह पे, कहीं 10 घर हैं, कहीं 100 घर हैं, तो इस तरीके से वाइड स्प्रेड है हैबिटेशन हमारी। हर जगह जाकर रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्स की होती है प्रिपेयर्डनेस। तो वो प्रिपेयर्डनेस मैंने पहले कहा कि कम्युनिटी लेवल प्रिपेयर्डनेस और फैमिली लेवल प्रिपेयर्डनेस इस साल वीक रह गई, पर पिछले कई सालों से सरकार की अच्छी प्रिपेयर्डनेस रही है मेरे हिसाब से। असम में हमने यूनिसेफ और ने काफी सारा काम सरकार के साथ पिछले सालों में किया है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं उनको कैसे अच्छा किया जा सके, उनकी सारी असेसमेंट्स हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुई हैं, और इस साल तो उसको अडेप्ट भी किया कोविड कॉन्टेक्स्ट के लिए कि कोविड में रिलीफ कैंप्स कोविड कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग होंगे, उनमें क्या अलग होगा, तो वो सब हो रहा है। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि सब लोग रिलीफ कैंप में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सोशल इश्यूज होते हैं जिसके कारण, या जनरली लोग बाग इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर पाते अपने घर से कि वो रिलीफ कैंप में आए, तो अक्सर लोग बाग अपने घर के आसपास ही किसी जो उनके पास प्लास्टिक शीट या कुछ होती हो, या एनजीओ या कोई दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, तो इस तरीके से चल रहा है। हमारा मेन काम अभी भी रिलीफ कैंप्स के अराउंड ही है,
लेकिन कोविड महामारी का समय है तो इस समय मानवीय राहत का कार्य तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, तो कोविड के एहतियाती उपायों के साथ साथ इस काम को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है?
जैसे रिलीफ कैंप्स में पहले नॉर्म होता था कि पर पर्सन 3.5 स्क्वायर मीटर्स की स्पेस दी जाती थी या प्लानिंग के लिए यूज करी जाती थी, और इस साल उसको डबल करके 7 किया गया था। और वाटर के प्रोविजन के लिए पहले 15 लीटर पर पर्सन होता था, इस साल 30 किया, उसको डबल किया है। सो क्योंकि हैंड वॉशिंग के लिए हमें चाहिए, तो डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए और लोगों का वाइटल पैरामीटर चेक करना, उसके लिए सारी सुविधा अब कैंप्स में बन गई है। कोविड अडेप्टेड जो रिस्पॉन्स रहा इसकी तैयारी अप्रैल जून में कर ली गई थी और वो काफी काम आया है।
वैश्विक महामारी कोविड 19 के संक्रमित लोगों की संख्या अब तक 1,74,82,602 से ज्यादा हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या भी 6,76,835 से ज्यादा है और भारत में अब तक 16,43,416 लोग संक्रमित हुए हैं और 35,807 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ध्यान दिलाया कि संक्रमण के बचाव और रोकथाम में हर जगह आम लोग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। WHO के मुताबिक अतीत के सामान्य हालात में अब लौटा नहीं जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व के गरीब लोगों को अस्थायी रूप से आय मुहैया कराने से संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रसार को कम किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौर।
दुनिया कोविड 19 महामारी की चपेट में है और इससे अरबों लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा कि लोग पुराने दिनों की तरह रोजमर्रा के जीवन में लौटना चाहते हैं और उनकी इस जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अतीत के सामान्य दिनों में फिलहाल नहीं लौटा जा सकता। महामारी से जो नए हालात पैदा हुए हैं उनके प्रति अभ्यस्त होने के लिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के रास्तों की तलाश की जाए। UN एजेंसी प्रमुख ने कहा कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा संक्रमणों की पुष्टि महज 10 देशों में हुई है और इनमें भी लगभग आधे मामले अमेरिका, ब्राजील और भारत में हैं।
Although all countries have been affected, we continue to see intense transmission.
वैसे तो सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन कुछ देशों के समूह में तेजी से बीमारी का फैलना जारी है। लगभग 1 करोड़ मामले यानी विश्व भर में कुल संक्रमणों की 2/3 संख्या 10 देशों में है और इनमें भी आधे मामले महज 3 देशों से हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख गेब्रियसिस के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोहराया है कि कोई व्यक्ति कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े इन सभी फैसलों से लोगों, उनके परिजनों की जिंदगी और मौत का अंतर तय हो सकता है, इसलिए हर समय सतर्कता बरती जानी बेहद अहम है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे या ठीक ऊपर रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी आय की गारंटी देने से संक्रमणों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट बताती है कि अस्थायी बुनियादी आय की व्यवस्था करने के लिए हर महीने $199 अरब की जरूरत होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक सत्र यानी आम चर्चा साल का सबसे अहम आयोजन होता है। इस वर्ष सितंबर में होने वाले 75वें महासभा के लिए विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 के कारण कार्यक्रमों में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अब विश्व के नेता कार्यक्रम में भाग लेने हेतु न्यूयॉर्क आने के बजाय अपने वीडियो संदेशों के जरिए दुनिया से संपर्क स्थापित करेंगे। अनेक देश विश्व महामारी कोविड 19 से उपजे संकट से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांडे और उनके सहयोगियों ने वर्चुअल कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजन का निर्णय लिया है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सदा हमें सहारा देता तेरी जय हो प्रभु। मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता। मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता।
रखनवाला तेरी जय हो प्रभु मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता सदा सहारा देता तेरी जय हो प्रभु मेरे प्यारे यीशु तू है प्रेमी दाता।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। फ्रांस के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने 31 जुलाई को मनाए जाने वाले बलिदान के पर्व ईद अल अधा के उपलक्ष में इस्लाम धर्मानुयायियों को एक संदेश प्रेषित कर एकता और भाईचारे की मंगल कामना की है। इस्लाम धर्मानुयायियों के साथ संबंधों के लिए राष्ट्रीय सेवा के निर्देशक फादर विंसेंट फेरोदी द्वारा हस्ताक्षरित धर्माध्यक्षों का संदेश 30 जुलाई को वेटिकन द्वारा प्रकाशित किया गया। संदेश में स्मरण दिलाया गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने कैथोलिक और इस्लाम जगत को बहुत करीब ला दिया है। कहा गया कि एक ईश्वर में विश्वास करने वाले हम कैथोलिकों और मुसलमानों को सभी के कल्याण और जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक सामान्य नागरिक दृष्टिकोण रखते हुए अपने विश्वास का पालन करना पड़ा। धर्माध्यक्षों ने याद किया कि लॉकडाउन के दिनों में हमने विश्वास के मूल तत्वों पर चिंतन किया तथा अन्यों के साथ एकजुटता और उत्कंठा के द्वारा हम दूसरे पर ध्यान देने के लिए बाध्य हुए। फ्रांस के धर्माध्यक्षों ने उन लोगों पर गहन दुख व्यक्त किया जो कोविड-19 महामारी के कारण मौत के शिकार हुए हैं तथा उन सब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने जी जान से इन दिनों बीमारों की सेवा की। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टरों, नर्सों, एम्बुलेंस चालकों, दुकानदारों, शिक्षकों, नगर पालिका कर्मचारियों को याद किया जिन्होंने लॉकडाउन के समय नागरिकों की निस्वार्थ सेवा की। धर्माध्यक्ष ने कहा कि हालांकि महामारी के कारण हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, महापर्व ईद अल अदा के उपलक्ष में हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ सहभागिता महसूस करते हुए उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। उन्होंने लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पृथ्वी पर अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखने के लिए हम सबको विश्वास में एकजुट रखें और इसके प्रत्येक दिन को भ्रातृत्व भाव और एकात्मता से परिपूर्ण रखें। आप सबको ईद अल अधा त्योहार मुबारक। प्रभु ईश्वर आपको और आपके परिवारों एवं समुदाय को आशीष प्रदान करें। केरल में सीरो मलाबार कैथोलिक महाधर्म प्रांत एर्नाकुलम अंगामली के धर्माधिपति और केरल के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल आलेन चेरी ने भारत के नए कर कानून की प्रस्तावना का पुरजोर विरोध किया है। कार्डिनल आलेन चेरी का कहना है कि उक्त संशोधन से भारत में निर्धनों को दी जा रही कल्याणकारी सेवाओं में बाधाएं आएंगी। एशियाई कलीसियाओं की प्रेस एजेंसी एग्लीजे दे आजिए ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित कर बताया था कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने धर्मार्थ कार्यों पर कर भुगतान और विदेशों से मिलने वाली सहायता राशि संबंधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संशोधन अनुच्छेद 11, 12 और 13 से संबंधित है जिसका उद्देश्य एक ही धर्म प्रांत की एक पल्ली से दूसरी पल्ली में तथा एक ही धर्म संघ अथवा धर्म समाज के संस्थानों के बीच धन के हस्तांतरण को रोकना है। कार्डिनल आलेन चेरी ने उक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि इस प्रकार का निर्णय भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मिशनरी कार्यों के लिए अनुदानों को रोक सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 31 मई को कार्डिनल आलेन चेरी और केरल में धर्म समाजों के प्रमुख फादर सेबेस्टियन मुंडाथी कुनेल ने उक्त कानून में किसी भी बदलाव का विरोध किया था और सरकार से आग्रह किया था कि वह प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करे, इसलिए कि यह संशोधन किसी भी धर्म के खास सिद्धांतों के खिलाफ है जो हैं एक दूसरे से प्यार करें, उनकी मदद करें और दूसरों के प्रति परोपकारी कार्यों में लगें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कलीसिया सदियों से भारत में मौजूद है और हमेशा कानूनों का सम्मान करती रही है। हमेशा वह पारदर्शिता के साथ काम करती रही है, अस्तु सरकार से आग्रह है कि वह उक्त संशोधन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। वैटिकन स्थित याजक वर्ग संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ के सौजन्य से कैथलिक अपदूत ग्रस्त निवारकों के लिए प्रकाशित नवीन निर्देशिका के अनुसार अपदूत ग्रस्त चंगाई अंधकार में डूबा हुआ कोई अस्पष्ट अभ्यास नहीं है, अपितु यह आनंद, प्रकाश और शांति की प्रेरिताई है। अपदूत ग्रस्त निवारकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा नवीन निर्देशिका तैयार की गई है, जिसमें विश्वास और धर्म सिद्धांत संबंधी तथा दिव्य भक्ति संबंधी धर्म संघों का भी योगदान रहा है। निर्देशिका मई माह में इताली भाषा में प्रकाशित हो चुकी है तथा जल्द ही यह अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित की जाएगी। निर्देशिका के प्राक कथन में अपदूत ग्रस्त निवारकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष फादर फ्रांसिस्को बामोंते ने लिखा, जब वास्तविक शैतानी आसक्तियों की स्थितियों में तथा कलीसिया द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार यह चंगाई यथार्थ विश्वास और आवश्यक विवेक से प्रेरित होकर लागू की जाती है, तब इसकी उद्धारकारी और सकारात्मक प्रकृति की प्रकाशना होती है, जिसकी विशिष्टता है पवित्रता, प्रकाश और शांति का अनुभव। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैथलिक अपदूत ग्रस्त निवारक कोई ओझा, झाड़ फूंक करने वाला अथवा जादू टोना करने वाला नहीं है। पुस्तक के प्राक कथन में रोम के प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल आंजलो दे दोनातिस ने कहा, अपदूत ग्रस्त निवारक अपने विवेक से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह एक आधिकारिक मिशन के ढांचे के भीतर काम करता है, जो उसे किसी तरह से यीशु मसीह और कलीसिया का प्रतिनिधि बनाता है। पर्सिक्यूशन रिलीफ नामक ख्रिस्तीय संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 के प्रथम 6 माहों के अंतर्गत ख्रिस्तियों के विरुद्ध हिंसा में 40% वृद्धि देखी गई। संगठन का कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट एक बहुत गंभीर तस्वीर पेश करती है। यह भी कहा गया कि कोविड महामारी और इसके चलते लॉकडाउन के बावजूद ख्रिस्तियों का उत्पीड़न जारी रहा। बताया गया कि 2020 के प्रथम 6 माहों में ख्रिस्तियों के विरुद्ध 293 हिंसक घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से 6 हत्या के मामले हैं। धर्म और विश्वास के कारण 2 महिलाओं का बलात्कार किया गया और उन्हें मार डाला गया। अन्य 2 महिलाओं और एक 10 वर्षीय बच्ची का बलात्कार इसलिए किया गया कि उन्होंने ख्रिस्तीय धर्म के परित्याग से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में ख्रिस्तियों के विरुद्ध हिंसा के सबसे अधिक मामले हुए, जहां कम 63 हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। इसी प्रकार तमिलनाडु में ख्रिस्तियों के विरुद्ध 28 हिंसक मामले सामने आए और एक गिरजाघर को आग के हवाले कर दिया गया। पर्सिक्यूशन रिलीफ नामक ख्रिस्तीय संगठन के अध्यक्ष शिबू थॉमस ने ऊका समाचार से कहा, धार्मिक राष्ट्रवाद और असहिष्णुतावाद का भयावह और छद्म धर्म युद्ध अब नई अमानवीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।